फरमाया, अल्लाह की निशानियों में है ये रात और दिन और सूरज और चांद। सूरज और चांद को सजदा न करो बल्कि उस जात को सजदा करो जिसने इनको पैदा किया, अगर वाकई तुम इसकी इबादत करने वाले हो। लेकिन अगर ये लोग गुरूर में आकर अपनी ही बात पर अड़े रहें तो परवाह नहीं, जो फरिश्ते तेरे रब के मुकर्रब हैं वो रोज़ो शब इसकी तस्बीह कर रहे हैं और कभी नहीं थकते, तो हम क्यों थकें अल्लाह के इस कलाम को पढ़ते हुए। और अल्लाह की निशानियों में एक ये है कि तुम देखते हो कि ज़मीन सूखी पड़ी हुई है, फिर जूं ही कि हमने इस पर पानी बरसाया यकायक वो फबक उठी और फूल जाती है। यकीनन जो ज़ात इस मरी हुई ज़मीन को ज़िंदा करता है वो मुर्दों को भी ज़िंदगी बख्शने वाला है, यकीनन वो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। और रह गए वो लोग जिनको ये कुरान अच्छा नहीं लगता, वो क्या करते हैं, इन्नल्लज़ीना युल्हिदून फी आयातिना, जो लोग हमारी आयतों को उल्टे मानी पहनाते हैं वो हमसे कुछ छुपे हुए नहीं। खुद ही सोच लो, क्या वो शख्स बेहतर है जो आग में झोंका जाने वाला है या वो जो क्यामत के रोज अमन की हालत में हाजिर होगा। करते रहो जो कुछ तुम कर रहे हो, तुम्हारी सारी हरकतों को अल्लाह देख रहा है। ये वो लोग हैं जिनके सामने कलामे नसीहत आया तो उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया, मगर हकीकत ये है कि ये एक जबरदस्त किताब है। कितने लोग इसकी गवाही देते हैं, है ना जबरदस्त किताब। बातिल ना इसके सामने से आ सकता है ना पीछे से। आप कुरान की एक आयत फेंके जरा, मूसा कैसा वाला काम करेगी, अजदहा बनकर सब बातिल इज्म को खा जाएगी। बस आज हम मुसलमानों को इसको हाथ में लेने की देर है, पूरी दुनिया पे इस किताब का जादू चलेगा और लोग इसको पढ़ेंगे। एक वीडियो किसी ने भेजी, एक नॉन मुस्लिम थी, कहती जब मैं कुरान की तिलावत सुनती हूँ तो मुझे कुछ होता है, इसको बंद कर दो। अरब मुल्कों में एक औरत गई तो वहां जब मीनारों से अजानों की आवाज आई तो छत पे चली और वो कह रही आई फील समथिंग। ये तो दिलों के तार हिलाने वाली किताब, ये दावत इतनी प्यारी और हमने इंसानियत को इससे महरूम रखा हुआ, क्या अल्लाह हमें माफ करेगा और ये हमारे इर्द गिर्द वाले हमें माफ करेंगे जिन तक हमने अभी तक पहुंचाया नहीं, क्योंकि अभी तक हमें भी नहीं पहुंचा। ये एक हकीमो हमीद की नाजिल करदा चीज है। नबी तुमको जो कुछ कहा जा रहा है इसमें कोई चीज भी ऐसी नहीं जो तुमसे पहले गुजरे हुए रसूलों को कही ना जा चुकी हो। बेशक तुम्हारा रब बड़ा दरगुजर करने वाला है और इसके साथ बड़ी दर्दनाक सजा देने वाला भी है। अल्लाह की सारी सिफात एक्सट्रीम पे है। अगर हम इस कुरान को अजवी कुरान बनाकर भेजते, देखिए आपके दिल की बात अल्लाह ने बयान कर दी, शायद किसी के जिन में याद हो कि क्या था कुरान अगर उर्दू में नाजिल होता, क्या था इंग्लिश में होता, कितना ईजी होता। सोचते ना क्यों अरबी में उतरा, मैं अरबी सीखनी पड़ी। तो आप उसका जवाब ले लीजिए, फरमाया अगर ये कुरान अजमी में होता, अजमी कहते हैं गैर अरबी कोई भी जुबान, इंग्लिश उर्दू फिर और नॉर्वेजियन और चाइनीज कोई भी लैंग्वेज ले ले, अगर हम इस कुरान को अजमी कुरान बनाकर भेजते तो ये लोग कहते क्यों ना इसकी आयतें खोल कर बयान की। क्या ही अजीब बात है, कलाम है अजमी और मुखातब अरबी। कहाँ नाजिल हो रहा था कुरान, अरबों में, इसलिए अरबी में आया। अगर कुरान अमेरिका में नाजिल होता, नबी सल्लम यूएसए में रहते तो कुरान शायद इंग्लिश में होता, अगर अल्लाह के नबी पाकिस्तान में होते, इंडिया में होते तो कुरान उर्दू में नाजिल होता। क्या पता चला हर मुल्क के लोग इस किताब को अपनी जुबान में समझें। मैं सोचती हूँ आज तक मुसलमानों के दिमाग में ये बात क्यों ना आई, हिफ्ज पे कितना जोर है, कितने मदरसे हैं, ख्वाहिशें कितनी हैं, जबरदस्ती डंडे के जोर पे अपने बच्चों को हाफिज बनाते हैं। वो रोते हमने नहीं बनना नहीं बनना, हम कहते बनो भाई, आप खुद बन जाए। आप इसलिए बना रहे हैं ना कि आपका जन्नत का सर्टिफिकेट बन जाए, 70 लोगों को जो बख्शवाएगा उसमें आप और आपके सर पे ताज बनाए। तो जब आपका बच्चा कुरान पढ़ेगा तो उसके माँ बाप के नाते आपके सर पे ताज बनाया जाएगा, तो वो आप पढ़ेंगी तो आपके माँ बाप को पहना दिया जाएगा। खुद पढ़े क्यों नहीं पढ़ते, मासूम बच्चों को हिप्स में डाल देते हैं जिनका मिलान है कि नहीं, लेकिन उन बेचारों को कुरान समझ नहीं आता। ये एक सोच गई पिछली सदी में कुरान के हिप्स को इतना आम किया गया कि आज आप देखिए माशाल्लाह पाकिस्तान इंडिया अमेरिका हर जगह हिफ्ज वाले बहुत हैं। आज के इस दौर का ये तकाजा है, जिस तरह पिछली सदियों में हमने कुरान के हिफ्ज को आम किया, इस सदी में कुरान के तर्जमे को आम करें, चेंज आएगी इंशाल्लाह। हाफिज कुरान कुरान खूबसूरत पढ़ते हैं, फिर भी अमल तभी करेंगे जब अल्लाह का खौफ होगा। कुरान पढ़ने वाला एक दफा कुरान से गुजर जाए तो हाफिज से ज्यादा आलिम बन जाता है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे। नबी आपको जो कुछ कहा जा रहा है इसमें कोई चीज भी ऐसी नहीं है जो आपसे पहले गुजरे हुए रसूलों को ना कही जा चुकी हो। बेशक तुम्हारा रब बड़ा दरगुजर करने वाला है और इसके साथ बड़ी सजा देने वाला है। अगर हम इस कुरान को अजमी बनाकर भेजते तो ये लोग कहते क्यों ना इसकी आयतें खोलकर बयान की गईं। क्या ही अजीब बात है कि कलाम अजमी और मुखातिब अरबी। इनसे कहो ये कुरान ईमान लाने वालों के लिए तो हिदायत और शिफा है, मगर जो लोग ईमान नहीं लाते इनके लिए ये कानों की डांट और आंखों की पट्टी है। दुआ करें अल्लाह हमें ऐसा ना करना। जिनको समझ आता है वो तो खुश होते हैं, हिदायत और शिफा लेंगे, जिनको समझ नहीं आता उनके कानों पे बोझ पड़ता है। जो बात समझ नहीं आती वो बोझ ही तो लगती है और आंखों की पट्टी। अल्लाह अकबर। और याद रखिए जो इस किताब को दूर रहकर पढ़ेगा ना उसके लिए ये किताब उतनी नाकाबिले तस्खीर होती जाएगी। जब आप इस किताब को अपनी किताब समझते हैं फिर फायदा होता है। सेफ डिस्टेंस पे रहकर इस किताब को सीखेंगे ना तो कोई एक आयत भी नहीं समझ आएगी, फिर यही हाल होगा जो इधर लिखा गया। फरमा इनका हाल तो ऐसा है जैसे इनको दूर से पुकारा जा रहा हो। इससे पहले हमने मूसा को किताब दी और इसके मामले में भी यही इख्तलाफ हुआ। अगर तेरे रब ने पहले ही एक बात तय न कर दी होती तो इन इख्तलाफ करने वालों के दरमियान फैसला चुका दिया जाता। और हकीकत यह है कि ये लोग उसकी तरफ से सख्त इज़्तिराब अंगेज शक में पड़े हुए हैं। मना मिला सालेहन फली नफसी ही व मन असा अफालेहा। जो कोई नेक अमल करेगा अपने ही लिए अच्छा करेगा और जो बदी करेगा इसका बवाल इसी पर होगा। और तेरा रब अपने बंदों के हक में जालिम नहीं है, तो जो करेगा उसको मिलेगा, जो नहीं करेगा उसका अपना नुकसान होगा। क्या पता चला कि इस किताब के साथ अपनी जिंदगी को जोड़ना खुद को मुश्किलों से निकालना है। अगली चंद आयत भी इसी पारे के साथ पढ़ेंगे। 25वां पारा आयत नंबर 47। इलैहि युरद्दु इल्मुस्सा। इस सात का इल्म यानी क़यामत का इल्म तो अल्लाह ही की तरफ से आता है, यानी अल्लाह को पता है क़यामत कब आएगी। वही इन सारे फलों को जानता है जो अपने शगुफों से निकलते हैं। इसी को मालूम है कौन सी मादा हामिला हुई और किसने बच्चा जना। फिर जिस रोज वो इन लोगों को पुकारेगा कहाँ है मेरे वो शरीक जिनको तुम पुकारते थे, कहाँ गए वो मेरे शरीक। ये कहेंगे हम अरज कर चुके कि आज हम में से कोई इसकी गवाही देने वाला नहीं। इस वक्त वो सारे माबूदान इनसे गुम हो जाएंगे जिनको ये इससे पहले पुकारते थे। और ये लोग समझ लेंगे कि इनके लिए अब कोई जाए पनाह नहीं। इंसान कभी भलाई की दुआ मांगते हुए थकता नहीं और जब कोई आफत इस पर आ जाती है तो मायूस और दिल शिकस्ता हो जाता है, मगर जो ही के सख्त वक्त गुजर जाने के बाद हम उसे अपनी रहमत का मजा चखाते हैं तो ये कहता है कि मैं तो इसी का मुस्तहिक हूँ और मैं नहीं समझता कि क़यामत कभी आएगी, लेकिन अगर वाकई मैं अपने रब की तरफ पलटाया गया तो वहां भी मजे करूंगा। ये गलती लगती है दुनिया के माल से कि दुनिया में चूंकि नाफरमानियों के साथ मिल रहा है तो देखना आखिरत में भी मिल जाएगा। अल्लाह ताला कहते हैं इसकी ये खुशफहमी दूर कर दो। हालांकि कुफर करने वालों को लाजमन हम बता कर रहेंगे कि वो क्या करके आए हैं और इन्हें हम बड़े गंदे अजाब का मजा चखाएंगे। इंसान को जब हम नेमत देते हैं तो वो मुंह फेरता है और अकड़ जाता है, और जब इसे कोई आफत छू जाती है तो लंबी चौड़ी दुआएं करने लगता है। ऐ नबी इनसे कहो कभी तुमने ये भी सोचा कि अगर वाकई ये कुरान, देख रहे हैं सूरत हामीम सजदा में बार बार टॉपिक कुरान, इस्तकामत कुरान, इस्तकामत कुरान, क्या कहा, अगर वाकई ये कुरान अल्लाह ही की तरफ से हुआ और तुम इसका इनकार करते रहे तो इस शख्स से बढ़कर भटका हुआ और कौन होगा जो इसकी मुखालफत में दूर निकल गया। आप देखिए कुरान जब नाजिल हुआ था ना उस वक्त भी लोगों को मौजजा लगा, आज तक ये एक मौजजा है। अल्लाह सुबहान तआला कहते हैं कि देखो ये किताब फितरत पे पड़े हुए पर्दों को कैसे खोलता है, कि जब दुख आता है तो बिल्कुल रियलिस्टिक हो जाते हो। गम के मौके पे कोई नहीं कहता मिक्स गैदरिंग हो, लेकिन शादी दावत खुशी ईद सालगिरह जो भी है पार्टी, कहते हैं इस तरह होता ही नहीं। वजह क्या है कि हम उस वक्त अल्लाह से दूर हुए होते हैं, खुशियों में हम रब को भूल जाते हैं, खुशियां देने वालों को भूलते हैं। आप देखिए जब घर में शादी होती है ना तो लोग अक्सर एक जुमला बोलते हैं सब खुश जाए, नौकरों को भी खुश करो, जोड़े दो, ससुराल को भी, घर बहनें आई उनको खुश करो। हर एक को हम खुश करते हैं अपनी शादियों के मौके पे और खुशी देने वाले को भूल जाते हैं। कितना ना शुक्र है इंसान, अल्लाह ताला हमें इस ना शुक्री से बचा ले। फरमान करीब हम इनको अपनी निशानियां आफाक में भी दिखाएंगे और इनके अपने नफ्स में भी, यहाँ तक कि इन पर यह बात खुल जाएगी कि ये कुरान वाकई हक है, बरहक है। کیا یہ بات کافی نہیں کہ تیرا رب ہر چیز کا شاہد ہے؟ آگاہ رہو، یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات میں شک کرتے ہیں، سن رکھو وہ ہر چیز پر محیط ہے۔ کیا پتا چلا، قرآن قرآن قرآن، نشانیاں، آیتیں، غور کر لو، گزر جاؤ گے اس دنیا سے، وقت گزر جائے گا۔ یاد رکھیے قرآن کا موضوع انسان، اور انسان کو ہدایت دینے کے لیے یا تو آیات آفاقی ہیں، کائنات کی یونیورسل فیکٹس، یا پھر قرآن کے اندر کی قرآن کی آیتیں، یا انفس، میرے آپ کے اندر ایک جہان برپا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ بتا دیا۔ آپ کو تھا کہ موریس وکائی ایک سرجن تھے، شاہ فیصل، اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے، ان کے علاج کے لیے یہ مقرر کیے گئے تھے۔ انہوں نے ان کے لیے علم کا بندوبست کیا۔ ان کو کہا کبھی آپ نے قرآن پڑھا؟ شاہ فیصل نے ان سے پوچھا کیا تم نے کبھی قرآن پڑھا؟ کہنے لگے ہاں پڑھا ہے، میں نے اس کا ٹرانسلیشن پڑھا ہے۔ تو شاہ فیصل نے کہا نہیں، آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ٹرانسلیشن، کیا تم نے عربی کا قرآن پڑھا؟ کہنے لگے نہیں۔ کہا لے کے آؤ۔ ان کے اوپر مقرر کیے، انہوں نے عربی سیکھی، قرآن پڑھا عربی میں، اور اس کے بعد یہ مسلمان ہو گئے۔ بڑی معروف کتاب ہے ان کی، قرآن، بائبل اینڈ سائنس، کھول کے دیکھیے، ان کی ہسٹری پڑھ کے دیکھے۔ یہ کتاب کفار کے بند دلوں کو کھولتی ہے۔ آج ہم مسلمانوں کو بھی اس کو پڑھنا پڑے گا تاکہ ہمارے دل پڑھے، دل ماننے لگے۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کتاب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و توب الیک۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، و توب علینا انک انت التواب الرحیم۔ و صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔